निवारक नजरबंदी प्रिवेंटिव डिटेंशन। हमने ऊपर पढ़ा है कि संविधान की धारा 22 के अधीन प्रदान की गई सुरक्षा निवारक नजरबंदी प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के अधीन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी। निवारक नजरबंदी क्या है? व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन? निवारक नजरबंदी भारत का अनोखा और दिलचस्प कानून है जिसके अधीन किसी व्यक्ति को कानून तोड़े बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। डीडी बासु के अनुसार निवारक नजरबंदी का अर्थ व्यक्ति को मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार करना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट ट्रायल। इस गिरफ्तारी का उद्देश्य व्यक्ति को सजा देना नहीं अपितु से गलत कार्य करने से रोकना है। फिनले के अनुसार यह निवारक नजरबंदी दंड देने वाला नहीं अपितु सावधानी पूर्वक उपाय है। इट इज नॉट प्यूनिटिव बट ए प्रिकॉशनरी मेजर। निवारक नजरबंदी कानून भारत में पहली बार 1950 में पास किया गया था। इस कानून के अधीन देश की सुरक्षा, विदेशी संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्र के लिए आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता था। एज 90। परंतु 31 दिसंबर 1969 को लोकतंत्रीय शक्तियों द्वारा सख्त आलोचना के कारण इस कानून को समाप्त कर दिया गया। 1971 में केंद्रीय सरकार ने इसके स्थान पर आंतरिक सुरक्षा कानून मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 पास कर दिया, परंतु इस कानून को जनता दल ने 1978 में सत्ता में आने के बाद समाप्त कर दिया। परंतु निवारक नजरबंदी की व्यवस्था अभी भी संविधान में विद्यमान है। आतंकवाद विरोधी कानून 2002 प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। 26 मार्च 2002 को प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतंत्रीय गठजोड़ एनडीए की सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों के बुलाए संयुक्त अधिवेशन में आतंकवाद विरोधी कानून प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पीओटीए पास किया गया था। यद्यपि विरोधी दलों द्वारा इस कानून का डटकर विरोध किया गया था, परंतु सरकार द्वारा संसद को विश्वास दिलाया गया कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। इस कानून को पास करने का उद्देश्य भारत में नित्य प्रति बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है जो आज देश की एकता और अखंडता के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। आतंकवाद विरोधी कानून प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट द्वारा आतंकवादी गतिविधियों को परिभाषित किया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की सूचना दिए जाने की व्यवस्था की गई है। पूछताछ इंटेरोगेशन के दौरान वकील की उपस्थिति की आज्ञा होगी। पुलिस हिरासत का समय अधिकतम 30 दिन होगा और डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट पुलिस के रैंक से निम्न व्यक्ति ऐसे केसों की छानबीन नहीं कर सकेगा। पोटा के स्थान पर अवैध गतिविधियां निरोधक संशोधन अध्यादेश जारी। पोटा रिप्लेस्ड बाय अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। सत्ता में आने के बाद डॉ मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बनी संयुक्त प्रगतिशील गठजोड़ यूपीए की सरकार द्वारा 26 सितंबर 2004 को एक अध्यादेश जारी करके पोटा को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर अवैध गतिविधियां निरोधक संशोधन अध्यादेश अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जारी किया गया था। यद्यपि पोटा की बहुत सारी व्यवस्थाओं को नए अध्यादेश द्वारा रख लिया गया था, परंतु पोटा को समाप्त करके सरकार ने चुनावों के समय लोगों के साथ किया गया वचन पूरा किया है। गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक संशोधन कानून दिसंबर 2008 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट दिसंबर 2008। 26 नवंबर 2008 को आतंकवादियों द्वारा मुंबई पर किए गए आक्रमण के बाद गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को अधिक कारगर और प्रभावशाली बनाए जाने के उद्देश्य को मुख्य रखकर दिसंबर 2008 में इस अधिनियम में कुछ संशोधन किए गए हैं, जैसे कि एक, आरोपी की निवारक नजरबंदी को 180 दिन तक बढ़ाया जा सकेगा। स्मरण रहे पहले यह नजरबंदी 90 दिन तक की जा सकती थी। दो, दूसरे पक्ष को सुने बिना आरोपी व्यक्ति को जमानत नहीं दी जाएगी। तीन, निजी बॉन्ड के आधार पर किसी को जमानत नहीं दी जाएगी। चार, आतंकवादी गतिविधियों में आरोपी पाई जाने वाले व्यक्ति को 5 वर्ष तक सजा दिए जाने की व्यवस्था की गई है और इसे उम्र कैद तक बढ़ाया जा सकेगा। पांच, आतंकवादी गतिविधियों के क्षेत्र को विशाल किया गया है। छह, विदेशी नागरिक जो गैर कानूनी ढंग से देश में दाखिल हुए हों और गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक कानून के अंतर्गत आरोपी पाए गए हों को जमानत दिए जाने से इनकार किया जा सकता है। निवारक नजरबंदी की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रारंभ से ही निवारक नजरबंदी से संबंधित व्यवस्थाएं वाद विवाद का विषय बनी रही हैं। डॉ बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में निवारक नजरबंदी के पक्ष में विचार प्रकट करते हुए कहा था, हमें ये मानना पड़ेगा कि देश की वर्तमान परिस्थितियों में कार्यपालिका के लिए ऐसे व्यक्ति को नजरबंद करना आवश्यक है। पेज 91, जो देश की सार्वजनिक व्यवस्था अथवा सुरक्षाओं को हानि पहुंचा रहा हो। ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि व्यक्ति की स्वतंत्रता राज्य के हितों से ऊपर रखी जानी चाहिए। डॉ अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि भारत की स्वतंत्रता अभी बाल्यावस्था इन्फेंसी में है और इसको बचाना अति आवश्यक होगा। इसका प्रयोग केवल लोकतंत्र के दुश्मनों के विरुद्ध ही किया जाएगा, परंतु अधिकतर सदस्य निवारक नजरबंदी की व्यवस्था के विरुद्ध थे। एचवी कामथ का विचार है, यह खेद और शर्म का दिन है, केवल परमात्मा ही भारतीय लोगों की सहायता करें। पंडित ठाकुर दास भार्गव, इट इज द डे ऑफ सोरो एंड शेम, मे गॉड हेल्प द इंडियन पीपल। एचवी कामथ। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने निवारक नजरबंदी को हमारी सभी असफलताओं का ताज बताया है, क्राउन ऑफ ऑल आवर फेलियर्स, पंडित ठाकुर दास भार्गव। और बख्शी टेकचंद ने निवारक नजरबंदी को दमन और स्वतंत्रता से इनकार का अधिकार पत्र कहा है, चार्टर ऑफ ऑपरेशन एंड डिनायल ऑफ लिबर्टी, बख्शी टेकचंद। निवारक नजरबंदी के विरुद्ध निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। एक, निवारक नजरबंदी को परिभाषित नहीं किया गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट डिफाइंड। निवारक नजरबंदी के अर्थों को संविधान के किसी भी भाग में परिभाषित नहीं किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप शासक दल इसका कोई भी अर्थ ले सकता है। दो, यह अलोकतंत्रीय है, इट इज अनडेमोक्रेटिक। निवारक नजरबंदी जैसे कानून लोकतंत्रीय संविधान में शोभा नहीं देते। एमवी पाइली के विचारानुसार जब तक निवारक नजरबंदी हमारे कानून की पुस्तक में रहेगा, उस समय तक भारतीय लोकतंत्र के मुंह पर एक धब्बा रहेगा। सो लॉन्ग एज द प्रिवेंटिव डिटेंशन रिमेन्स ऑन द स्टैट्यूट बुक, देयर विल ऑल्सो रिमेन एन अनसीमली ब्लॉट ऑन द फेयर फेस ऑफ डेमोक्रेसी। एमवी पाइली। तीन, स्वतंत्रता को खतरा, थ्रेट टू लिबर्टी। निवारक नजरबंदी से मानवीय स्वतंत्रता को गंभीर खतरा है और इसके विरुद्ध सुरक्षा के लिए किए गए प्रबंध पर्याप्त नहीं है। जस्टिस पतंजलि शास्त्री के शब्दों में, निवारक नजरबंदी निजी स्वतंत्रता पर गंभीर आक्रमण है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ए सीरियस इन्वेजन ऑन पर्सनल लिबर्टी। जस्टिस पतंजलि शास्त्री। चार, इसका शांतिकाल में प्रयोग गलत है, इट्स यूज ड्यूरिंग पीस इज रॉन्ग। और भी कई देशों में निवारक नजरबंदी जैसे कानून का प्रबंध है, परंतु उनका प्रयोग आपातकालीन स्थितियों में किया जाता है। भारत में निवारक नजरबंदी का प्रयोग शांतिकाल और आपातकाल दोनों स्थितियों में किया जा सकता है, जो कि गलत है। पांच, यह न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के विरुद्ध है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत मांग करता है कि व्यक्ति को उसके गिरफ्तार किए जाने का कारण बताया जाए और फिर गिरफ्तार किया जाए, परंतु निवारक नजरबंदी के अधीन व्यक्ति को गिरफ्तार पहले किया जाता है और कारण बाद में बताया जाता है, जबकि यह गलत है। छह, यह कानून के शासन की व्यवस्था के विरुद्ध है, इट इज अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ रूल ऑफ लॉ। भारत में कानून के शासन की व्यवस्था की गई है, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कानून के सामने समान है, परंतु निवारक नजरबंदी कानून इस व्यवस्था का उल्लंघन करता है। सात, सत्ताधारी दल द्वारा इसके दुरुपयोग की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स मिस यूज बाय रूलिंग पार्टी। यद्यपि कई बार शासक दल द्वारा विश्वास दिलाया गया है कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, परंतु मार्क्सवादी नेता ए.के. गोपालन के विचारानुसार निवारक नजरबंदी दो धारी तलवार है जिसका प्रयोग लोकतंत्र के समर्थकों और दुश्मनों दोनों के विरुद्ध किया जा सकता है। आगे चलकर उनके द्वारा यहां तक कहा गया था कि इस कानून का प्रयोग कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने विरोधियों को कुचलने के लिए किया जाएगा। पेज 92। अंत में हम कह सकते हैं कि निवारक नजरबंदी जैसे कानून लोकतंत्रीय संविधान में शोभा नहीं देते, परंतु यदि इसका प्रयोग किया जाना है तो बहुत ही सीमित रूप में, कड़वी दवाई के रूप में किया जाना है।